दिन भर 14 जनवरी मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। चरमपंथियों की मदद के आरोप में पकड़े गए पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज।
ये कांग्रेस की जुबान फिसल नहीं रही है, ये कांग्रेस की जुबान पाकिस्तान की बोली बोल रही है।
निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन, मां को उम्मीद 22 जनवरी को ही होगी फांसी।
बाकी हमें उम्मीद है कि यहां भी इनकी याचिका खारिज होगी और 22 को फांसी।
बीबीसी के खजाने से आज सुनिए भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक झलक।
मूक फिल्मों के धरातल से सवाक सिनेमा के आकाश तक।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में चरमपंथियों की मदद करने के मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह रैना का नाम अगर देवेंद्र खान होता तो आरएसएस की ट्रोल आर्मी की प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक होती। कश्मीर के पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह रैना पर चरमपंथियों की मदद करने का आरोप लगा है और वो पुलिस हिरासत में है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान की निंदा की है। ईरान ने यूक्रेन के विमान पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सरकार का कहना है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि जो भी इस अक्षम्य गलती के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है। यूक्रेन का विमान गलती से गिराए जाने को लेकर ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हादसे में विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का कहना है कि उन्होंने ईरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते के उल्लंघन पर एक औपचारिक विवाद प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों देशों का कहना है कि परमाणु समझौते के उल्लंघन ने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, पर उन्हें लगता है कि इस औपचारिक विवाद प्रक्रिया के जरिए समझौते को बचाया जा सकता है। अगर ये विफल हो जाती है तो ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीनों देशों ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस समझौते से अलग होने के बाद से वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रेक्जिट समझौते में यूरोपीय संघ के वार्ताकार मिशेल बारने ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। उनकी चेतावनी ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में स्थानीय नागरिकता चाहने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ भेदभाव को लेकर है। उन्होंने यूरोपीय संसद के सदस्यों से कहा कि यूरोपीय संघ आधे अधूरे उपाय या छुपे हुए भेदभाव को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप के नागरिकों में उनके भविष्य को लेकर निश्चितता होनी चाहिए। हम लगातार अपने नागरिकों के हितों का बचाव करते रहेंगे। हम अपनी क्षमता के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। यूरोपीय संघ हर संभव कोशिश करेगी कि ब्रिटेन के लाखों नागरिकों को संघ के देशों में पूर्ण अधिकार मिलें। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन की सरकार अपने देश में भी यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करे। ये थे यूरोपीय संघ के वार्ताकार मिशेल बारनिये के शब्द। फ्रांस में पीडोफाइल मामलों में आरोपी पूर्व पादरी बेरनार प्रेना के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। उन्हें पिछले साल पादरी के पद से हटना पड़ा था। उनके ऊपर दो दशकों तक दर्जनों लड़कों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप है। वहीं एक साल पहले लियों के आर्कबिशप फिलिप बारबरांग पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा था। बेरनार प्रेना के वकील फिदरिच दोयज ने कोर्ट जाते हुए पत्रकारों से कहा कि उनके मुवक्किल ने जो पीड़ितों के साथ किया उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। अपने कामों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। उनके माता पिता और चर्च उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो इसका सामना कर रहे हैं और आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। इस मामले में 30 साल बाद एक और सवाल पूछा गया है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये मुकदमा 30 साल पहले क्यों नहीं हुआ। ये थे पूर्व पादरी बेरनार प्रेना के वकील के शब्द। पाकिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि असामान्य रूप से हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इनमें से 60 मौतें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हुई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श राठौर। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात चरमपंथियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह रैना की, जिन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कल कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने देवेंद्र सिंह की पुलवामा हमले में भूमिका होने की आशंका जताई थी। आज लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह रैना का नाम अगर देवेंद्र खान होता तो आरएसएस की ट्रोल आर्मी की प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक होती। बदले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को धर्म के साथ मिक्स करने का आरोप लगाया। पूरे मामले पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
कश्मीर में चरमपंथियों की मदद करने के मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह रैना को लेकर मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। पूरा मामला शुरू हुआ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट से। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस मामले में पकड़े गए अधिकारी का नाम अगर देवेंद्र खान होता तो आरएसएस की ट्रोल आर्मी की प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक होती। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि पुलवामा के जघन्य हमले के असली अपराधी कौन थे। इस मामले की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर दिए गए अधीर रंजन चौधरी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान की निंदा करते हुए पूछा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मन में शक है कि ये पाकिस्तान की हरकत नहीं थी। उन्होंने कहा,
मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आई एम आस्किंग यू ऑन द कैमरा, डू यू हैव एनी डाउट एज टू हु वर द परपेट्रेटर्स ऑफ द पुलवामा अटैक। आप कैमरे में आइए और आज आप ऐलान करिए कि आपको हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। और आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। एक बार जुबान फिसल सकती है, दो बार जुबान फिसल सकती है, वो जुबान जो बार बार फिसले, वो जुबान किसकी बोली बोल रही है, ये हिंदुस्तान पूछेगा। ये कांग्रेस की जुबान फिसल नहीं रही है, ये कांग्रेस की जुबान पाकिस्तान की बोली बोल रही है।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करने से बाज आने को तैयार नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में आतंकियों की मदद के लिए देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, अगर वो देवेंद्र खान होता तो उस पर बीजेपी और संघ के लोगों के विचार अलग होते। कांग्रेस के नेता को मालूम होना चाहिए कि जो इस देश की मिट्टी से गद्दारी करेगा उसके लिए विचार एक जैसे ही हमारे होंगे। हम उसको कभी भी किसी भी धर्म का हो उसको क्षमा करने वाले नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको धार्मिक रंग देना चाहती, पुलवामा पर सवाल उठा रही है, कह रही पुलवामा पर फिर से जांच होनी चाहिए। किस तरह की भाषा बोल रही है? इस तरह के बयान पाकिस्तान को मदद करते हैं। पाकिस्तान कांग्रेसी नेताओं के बयान को लेकर पूरे दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और भारत के पक्ष को कमजोर करता है।
अपने बयान पर हंगामा होने के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी है।
Yes, I had referred that had Devinder Singh by default been named Devinder Khan, certainly.
हाँ, मैंने देवेंद्र सिंह का जिक्र किया था कि अगर वो देवेंद्र खान होते तो आरएसएस की ट्रोल रेजिमेंट की प्रतिक्रिया जोरदार होती। इसका कारण यह है कि आरएसएस और बीजेपी हमारे देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपको यूपी और कर्नाटक के उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए जहां पुलिस की गोलियों से प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, तो उनसे यह पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पाया कि क्यों आरएसएस और बीजेपी देवेंद्र सिंह के मामले पर चुप हैं। अगर वो देवेंद्र खान होते तो क्या तब भी चुप रहते?
इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार फारूक खान ने डीएसपी देवेंद्र सिंह मुद्दे पर बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कश्मीर के पुलिस अधिकारी देवेंद्र सिंह रैना पर चरमपंथियों की मदद करने का आरोप लगा है और फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। 57 साल के देवेंद्र सिंह 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में चरमपंथियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान प्रमुख पुलिसकर्मियों में रहे हैं। देवेंद्र सिंह भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल इलाके के रहने वाले हैं, जिसे चरमपंथियों का गढ़ भी कहा जाता है। कश्मीर में मौजूदा चरमपंथ का चेहरा रहे शीर्ष चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी का भी संबंध त्राल से था।
चरमपंथियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह रैना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग को लेकर जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद। अब बात निर्भया मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। इन दोनों पर साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप है। मामले पर सुनवाई चैम्बर के भीतर हुई थी, जिसके बाद जस्टिस एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके बाद निर्भया की मां ने कोर्ट के आदेश पर संतोष जताया है।
पटियाला कोर्ट हाउस के जज साहब बोले कि आपके पास 20 दिन का वक्त है, आपके जितने सरकारी रेमेडी हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली 7 जनवरी तक इन लोगों ने एक भी पटिशन कहीं भी नहीं डाली, या राष्ट्रपति के पास या कहीं भी। फाइनली कोर्ट ने इनका डेट वारंट जारी कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। अभी उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए आए हैं 2 जने, तो मुझे पूरा उम्मीद है, सबको पता है, कोर्ट को पता है, सरकार को, सबको पता है कि इन लोगों ने जो भी कर रहे हैं, ये केस को लंबा करने के लिए कर रहे हैं, फांसी को स्टे करने के लिए कर रहे हैं, इनका कानून के साथ ये मजाक कर रहे हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि यहाँ भी इनकी याचिका खारिज होगी और 22 को फांसी।
निर्भया की माँ को उम्मीद है कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होगी। तो आज कोर्ट में क्या हुआ और मामला कहाँ पहुँचा है, जानने के लिए मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती से।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला दिया है। आपने फैसले में ये कहा कि रोटी पिटिशन जो था विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह का, उन दोनों का डिसमिस कर दिया, यानी कि उन दोनों के पास और एक ही विकल्प बचा है और है वो मर्सी पिटिशन, यानी कि दया याचिका, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो जाके फाइल कर सकते हैं। अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएंगे तो हम ये मान के चलें कि जनवरी 22 जो मंगलवार है, सुबह 7 बजे फांसी होनी है, उनको तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि और बाकी जो 2 कन्विक्ट डेथ रो बचे हुए, उनका नाम है अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता, उनकी अभी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होना सुप्रीम कोर्ट में भी बाकी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 22 बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 6-7 दिन बचे हुए हैं, 6-7 दिन के अंदर अगर वो नहीं आते हैं तो भी उनका भी फैसला हम ये मान के चलें कि उनको भी जनवरी 22-7 तारीख तक सुबह फांसी दे दी जाएगी। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला के सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रहा है एकदम क्लियर, ये कह रहा है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है और इस मेरिट को हम बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई याचिका में कोई भी दलील ऐसा नहीं किया गया है जो कि हम कंसिडर करें।
इस केस पे आपकी शुरू से नजर रही, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि कहां से ये केस चला और अब तक क्या क्या मोड़ आए।
देखिए, ये केस जब हुआ था 2012 में, ये जो संगीन जो एकदम हुआ था, ये ब्रूटल गैंगरेप एंड मर्डर हुआ था, मैं इस केस को पूरी तरीके से शुरू से लेके कवर किया हूँ, 2012 से लेके कवर किया हूँ। साकेत कोर्ट में फैसला आया था 2013 को, मुझे याद है वो दिन, सितंबर 13 तारीख था 2013 का, 2013 का जजमेंट था साकेत कोर्ट का। एएसजे एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना साहब थे, उन्होंने फांसी दिया था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी अक्यूज के द्वारा, हाईकोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा, यानी कि हाईकोर्ट ने भी इनको बरकरार रखा, ये कहा कि फांसी दे देनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ, क्यूरेटिव डिसमिस हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि हम ये जो जस्टिस मिलना है उनके निर्भया के फैमिली को, उनके माँ बाप को, पेरेंट्स, उन्होंने काफी लंबी लड़ाई, उनको लग रहा है कि न्याय जल्दी मिलने वाला।
निर्भया मामले में 2 दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दिए जाने को लेकर जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ जारी विरोध की वजह से बंद कालिंदी कुंज रोड को खुलवाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो कानून के दायरे में रहते हुए जनहित में कार्रवाई करे। शाहीन बाग इलाके में बीते 1 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से ये सड़क बंद है और साथ ही इसके साथ लगता बाजार भी बंद है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा शाहीन बाग पहुंचे और वहां पर धरने पर बैठी महिलाओं से बात करके उनकी प्रतिक्रिया जानी।
ये दिल्ली का शाहीन बाग है जहां की महिलाएं पिछले 1 महीने से नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले जाने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। ये महिलाएं दिसंबर की सर्द रातें हों या जनवरी की सर्द शामें यहीं बैठी हैं और ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती है लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये एक ओवरब्रिज है जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते पर है और नीचे का ये अहम रास्ता बंद है। रोज़ाना लाखों लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसे खुलवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस कानून संयम कार्रवाई करे। आज इस प्रदर्शन में बार बार ये बात उठती रही कि दिल्ली पुलिस आएगी, कार्रवाई कर सकती है। हमने कई प्रदर्शनकारियों से बात की और पूछा कि क्या इस प्रोटेस्ट ने अपना मकसद हासिल कर लिया है और क्या अब इस प्रोटेस्ट को खत्म हो जाना चाहिए। इनमें से अधिकतर का कहना था कि प्रदर्शन अभी चलता रहेगा।
मुझे नहीं लगता है, अभी तो मकसद है कि NRC और CAA वापस हट जाए, और अभी भी उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हटेगा, वो अभी भी अपनी बात पे अड़ रखे हैं कि ये नहीं वापस जाएगा।
हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हम लोग इसी तरह बैठेंगे जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से बैठ रहेंगे, तो भी हम लोग नहीं हटेंगे, तो भी हम लोग बैठे रहेंगे। जितने भी लोग हैं सब इंसान हैं, सारे इसी के लिए बैठे हुए हैं। इस काले कानून को वापस लेना होगा गवर्नमेंट को।
हमारा रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हटूंगी, एक कदम पीछे नहीं हटना। वो गोली चलाएंगे चलाएं, पत्थर चलाएंगे चलाएं, जो भी करना है करें, आंसू गैस के गोलों से हम नहीं डरते।
शाहीनबाग के इस प्रोटेस्ट का एक बड़ा मकसद ये भी था कि नागरिकता संशोधन कानून पर बात हो, उसके खिलाफ आवाज उठे। यहाँ मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बड़ा मकसद अब हासिल हो गया है और अब इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
हर प्रोटेस्ट का एक मकसद होता है और शाहीन बाग की औरतों ने ये बहुत अच्छी तरह से जो मकसद था उनका, उन्होंने पूरा कर लिया है और ये पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एस्टैब्लिश हो गया है कि शाहीन बाग की औरतें NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अब इस प्रोटेस्ट को अगले सीढ़ी पे जाना ज़रूरी है और वो सीढ़ी ये है कि यहाँ से औरतें निकलें 10-10 के गुट बना के और पूरी दिल्ली में और पूरे देश में फैलें।
तो मैं तो यही कहूँगी, और ये बैठी हैं हमारी प्यारी बहनें हमारे साथ, तो हम तो यही कहेंगे इनसे कि इस वक्त दानिश से काम लें, इस वक्त ऐसा करें कि जो पब्लिक है उसको इतनी ज़बरदस्त इनकन्वीनियंस ना हो। जामिया में भी बच्चे कर रहे हैं, मैं जामिया में रहती हूँ, मैं रोज़ आती जाती हूँ, मुझे थोड़ा ट्रैफिक जैम तो मिलता है मगर मैं आ जाती हूँ आराम से। ये जो जैम हो गया है, इसको महीना भर अब हो गया है, थोड़ा सा गिव करें और थोड़ा सा टेक करें।
जैसे जैसे शाम ढलती है, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती जाती है और अब यहाँ सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं आ रहे हैं बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो इन प्रदर्शनों से कैसे निपटती है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बिना बल प्रयोग के यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। देवलीन राय के साथ दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
इससे पहले हमारे सहयोगी अनंत प्रकाश वहाँ पर पहुँचे और जो लोग जिनकी रोजी रोटी उन दुकानों से जुड़ी है जो कि शाहीन बाग इलाके में जिनकी दुकानें हैं और साथ ही और भी काम करते हैं, उनका इन प्रदर्शनों पर क्या कहना था वो सुन लेते हैं।
बहुत समस्या हो रही है, पब्लिक परेशान है, पैदल चलने वाले भी, गाड़ी वाले भी, कार कोई भी नहीं जा सकता, पूरा रोड ब्लॉक पड़ा हुआ है। न्योटा जिसको जाना है, डेंडी से जा रहे हैं तो बदल पर होकर जाना पड़ता है। इतना लंबा रूट है कि पब्लिक परेशान हो रही है, एक महीना हो गया रोड खुलने को नहीं है।
NH 24 हाईवे रोड है ये, जो नोएडा को हर जगह को जोड़ता है, मगर अब क्या है, इसे हमें भी परेशानी है, दूसरे लोगों को भी परेशानी है। क्यों है, अगर यहाँ पे हम एक महीने से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है यहाँ पे पूछने के लिए कि भाई आपको क्या परेशानी है।
ठंड के बावजूद हम लोग पूरी रात पड़े रहे, पूरा दिन यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई बंदा आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा नहीं आया जो हमसे ये सवाल करे कि आपकी क्या तकलीफ है, आप क्यों यहाँ हो, आपके किन क्या मजबूरी है, एक बंदा आज तक सुनने नहीं आया।
अब मेरा 13-14 घंटे डेली लगता है और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली मुझे पैदल चलना पड़ता है और शाम को 7:30 के बाद ही मैं अपने घर पहुंचता हूं। डेली का है रूटीन ये, एक महीने से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस कालंदी कुंज के जाम से।
वक्ती तौर पे परेशानी है, लॉन्ग रन में इस ये कुर्बानी लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी आप समझिए, इंसानियत के नाते ह्यूमनिज्म कोई चीज़ होती है।
पर डे का अगर हम मार्केट का नुकसान देखें तो 30-35 लाख रुपए का नुकसान पर डे का है और हम प्रोटेस्ट के साथ हैं, मार्केट के साथ हैं, आवाम के साथ हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अभी हमारा चाहे 15 दिन चले चाहे महीना भर चले, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ना।
तो ये वो लोग थे जो प्रभावित हैं उस धरने की वजह से। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं 31 जनवरी से PBC हिंदी सेवा के रेडियो प्रसारण बंद हो रहे हैं, इसलिए हम आपको आजकल अपने खजाने से प्रसारित कुछ ऐसी श्रृंखलाओं की झलकियां सुना रहे हैं जिनकी यादें आज भी श्रोताओं के जहन में ताज़ा हैं। आज सुनिए भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक झलकी। 19 एपिसोड की इस सीरीज़ का प्रसारण मार्च 1991 में शुरू हुआ था। प्रस्तुत करता है ललित मोहन जोशी।
मूक फिल्मों के धरातल से सवाक सिनेमा के आकाश तक, प्रस्तुत करता ललित मोहन जोशी।
रवि, तुम नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। आज तो मैंने उन्हें रोक दिया, लेकिन कल फिल्म डायरेक्टर वाला किस्सा दोहराना चाहती हो क्या?
और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक तो सली मुझे।
19वीं शताब्दी ने जाते जाते एक ऐसा चमत्कार दुनिया की झोली में डाला जो आने वाली शताब्दी में साहित्य, संगीत और कला के सभी रूपों को आत्मसात कर अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति में इन सब को पीछे छोड़ गया।
मूलतः यह वैज्ञानिक तकनीक का करिश्मा था, पर दुनिया के लिए तस्वीरों के चलने का रोमांच।
भारत में फिल्मों की कहानी 7 जुलाई 1896 को प्रारंभ हुई, जब बंबई की जनता ने दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अनोखा विज्ञापन देखा।
आइए इस शताब्दी के अद्भुत चमत्कार, दुनिया के महानतम आश्चर्य को आज ही देखने आइए बंबई शहर के वाटसन होटल में आज शाम। आइए।
छोटी छोटी प्रारंभिक मूक फिल्मों का पहला प्रदर्शन फ्रांस के लुमियर भाइयों की एक कंपनी ने आयोजित किया था, जो कि पश्चिमी देशों में अपने प्रदर्शन के थोड़े ही समय के बाद भारत तक आ पहुंचा था। यानी भारत में फिल्मों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि दुनिया के पश्चिमी देशों में।
मूक युग में दादा साहब फाल्के की प्रारंभिक फिल्मों से लेकर आज तक भारत अपना एक विशिष्ट सिनेमा विकसित कर चुका है, जिसे हम उसकी अपनी संस्कृति, विभिन्न कला रूपों व समय समय पर विश्व सिनेमा से जनित प्रभावों का एक सशक्त मुमताज कह सकते हैं। पर भारतीय सिनेमा के विकास क्रम को आखिर आप किस रूप में देखेंगे? ये सवाल मैंने बंबई में नई धारा के सशक्त सिनेकार श्याम बेनेगल से किया।
Well, you see, the last 9 decades of Indian cinema, one of the things, if you see it, if you see the whole flow of Indian,
यदि आप भारतीय सिनेमा के पिछले 9 दशकों का इतिहास उठाकर देखें, तो आप पाएंगे कि भारत में सिनेमा का स्वदेशीकरण किया गया है। भारतीय सिनेमा का अपना ही एक ढांचा है, वर्णन की अपनी ही एक शैली है, दृश्यों, संवादों और संगीत के उपयोग का अपना एक अलग तरीका है, और ये सब कुछ हमारे मनोरंजन की परंपरा का परिणाम है, क्योंकि भारतीय सिने दर्शकों की अपेक्षाएं कुछ ऐसी ही रहीं, मांग कुछ ऐसी ही रही। भारतीय मनोरंजन की परंपरा विभिन्न नाट्य शैलियों से आई, जिनमें नृत्य भी था और संगीत भी और विविध मनोरंजन भी। वो सभी कुछ भारतीय फिल्मों में पिरोया गया और अंततः फिल्मों का एक अद्भुत रूप उभर कर सामने आया। लेकिन साथ ही साथ, चूंकि फिल्मों की टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से आई, इसलिए भारतीय सिनेमा पर पश्चिमी वर्णनात्मक शैली का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन वो केवल ऊपरी सतह तक ही सीमित रहा।
सिनेमा में भारतीयता के वास्तविक जनक थे महाराष्ट्र के ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें आज सिने जगत में दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। इनकी पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र सन 1913 में बनकर तैयार हुई।
फाल्के के पूर्व जो फिल्में बनी थीं, वे पूरी तरह से सीधी सपाट फिल्में थीं। सीधे रंगमंच की प्रस्तुति को कैमरा एक जगह रखकर उतार लिया जाता। फिल्म विधा में वास्तविक प्रयोग दादा साहब फाल्के ने किए, इसे कोई नकार नहीं सकता। पूना स्थित भारतीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक श्री पी के नायर से जब मैंने इसी विषय पर बात की, तो उनका भी यही मानना था।
दादा साहब फाल्के ने जो किया है, उन्होंने अभी जो हम फिल्म बनाने के जो हम जानते हैं ना, जो हर एक शॉट के मुताबिक एक शॉट इधर से लेगा, फिर कैमरा का पोजीशन चेंज करके दूसरा शॉट लेगा, जो फिल्म जैसे बनाना चाहिए, जो सब अंडरस्टैंडिंग करता है जो फिल्म के, वो उसका तरीका दादा साहब फाल्के ने शुरू किया।
दादा साहब फाल्के ने कथा फिल्मों के अलावा डॉक्यूमेंट्री व शिक्षाप्रद फिल्में भी बनाई। उन्होंने रंगाचारी फिल्म समिति के सामने भारत में एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा। फिल्म विधा में वे सर्वगुण संपन्न थे।
निर्देशन के अलावा वे संपादन भी स्वयं करते। तो क्या ये माना जा सकता है कि फाल्के ने ही प्रमुख रूप से मूक युग में भारतीय फिल्मों की एक पहचान गढ़ी? ये सवाल मैंने संग्रहालय के पी के नायर से किया।
सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट उन्होंने लिया है मिथोलॉजिकल्स के ऊपर, यानी हिंदू एपिक्स के ऊपर, महाभारत और रामायण के ऊपर। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो पिक्चर्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और जो उन्होंने किया है फिल्म में, वो वही बिकम्स वही जो स्टैंडर्ड हुआ था। जैसे वो कॉस्ट्यूम्स दे, जो गॉडेस का जो फेशियल एक्सप्रेशंस दे, मूवमेंट दे, और सेटिंग का वो प्रॉपर्टीज दा, वो सब उसका स्टैंडर्ड जो बनाया था वो दादा साहब फाल्के ने। और बाद में जो फिल्म मेकर्स जो आए थे वो सब इनका नकल किया या थोड़े तरफ इनका इंस्पिरेशन से ज़्यादा बढ़ाया था।
मूक युग के ही एक अन्य महत्वपूर्ण सिनेकार बाबूराव पेंटर थे, जिन्होंने कोल्हापुर में एक महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की थी। पेंटर साहब यूं तो यथा नाम तथा गुण वाली कहावत को चरितार्थ करते थे, यानी मूल रूप से वे एक चित्रकार थे, पर उनका प्रिय विषय इतिहास था। मराठा और पेशवा इतिहास पर उनकी खास पकड़ थी। नेताजी पालकर, छत्रपति शिवाजी जैसी फिल्में उन्होंने मूक युग में बनाई, साथ ही उन्होंने भीड़ व युद्ध के चित्रांकन में भी विशेष प्रभाव पैदा किए।
बाद की पीढ़ी में फिल्म इतिहास में एक सशक्त सिनेकार के रूप में छा जाने वाले सिनेकार वी शांताराम बाबूराव पेंटर के ही शिष्य थे। कलकत्ता के धीरेन्द्र गांगुली भी उस युग के एक महत्वपूर्ण सिनेकार थे, जिन्होंने पहले पहल सामाजिक फिल्मों की परंपरा डाली। उन्होंने समसामयिक विषयों पर व्यंग चित्रों का भी निर्माण किया।
धीरेन्द्र गांगुली ने पश्चिमी संस्कृति के दीवाने एक व्यक्ति पर एक जानी मानी फिल्म इंग्लैंड रिटर्न बनाई। धीरेन्द्र गांगुली की फिल्मों का मुख्य आशय भारतीय जनता के भीतर राष्ट्रीय सम्मान जागृत करना था।
बंगाल की एक और सिने विभूति थे हिमांशु राय, जिन्होंने रंगमंच का प्रशिक्षण इंग्लैंड से और सिने प्रशिक्षण जर्मनी से लिया था। साहित्य और रंगमंच में उनकी विशेष रुचि थी। भारतीय और विदेशी सहयोग से फिल्म निर्माण का श्री गणेश करने वाले वे पहले भारतीय सिनेकार थे।
पर पूना फिल्म संस्थान से सेवानिवृत्त प्रोफेसर सतीश बहादुर की राय मूक फिल्मों के बारे में बिल्कुल हटकर है। वे इस युग को मूलतः एक तफरी और मनोरंजन के माध्यम के रूप में आंकते हैं। उनका मानना है कि सही मायने में भारत का गंभीर कलात्मक सिनेमा सत्यजीत रॉय की पाथेर पांचाली से प्रारंभ होता है।
जो उसके शुरू के बनाने वाले लोग थे, जैसे दादा साहब फाल्के वगैरह, उनका एक बड़ी एक समझ इस बात की थी कि ये एक माध्यम जो है वो आम लोगों की तफरी का माध्यम है। लिहाजा एक इस्तेमाल माध्यम का इस तरह से कि जो पब्लिक चाहती है उसी तरह की फिल्म बनाओ। मैं समझता हूँ इसमें सबसे जो एक क्रूशल काम हुआ है वो सतीत राय का है।
ओपु, उठ भी नहीं? ओपु, पाछले जा भी नहीं? ओ, ओपु, उठ बाबा।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर कह ले तो पीना ही पड़ेगा।
ये थी हमारी खास प्रस्तुति और अब चलते चलते खेल की दुनिया के समाचार बताएंगी सूर्यांशी पांडे।
और खेल के समाचार जो हमारे भारतीय फैंस हैं उनके लिए कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में अभी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में जो मुकाबला हो रहा है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला है, जिसके अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही है और 205 रन बना चुकी है 31 ओवर पर, और डेविड वॉर्नर ने कुछ ही क्षण पहले 104 रन बनाए, यानी कि उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की, और एरन फिंच अभी मैदान पर है जिन्होंने 83 रन बनाए हैं, और सबसे ज्यादा अगर रन बनाए भारत की तरफ से तो वो सिर्फ शिखर धवन रहे जो 74 रन बना पाए, तो कोहली 16 पर ही आउट हो गए थे।
जी, कितना लक्ष्य दिया था?
लक्ष्य उन्होंने 256 का दिया था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यांशी। तो आज दिन भर कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो संभाला हमारे सहयोगी शाकिर आलम ने। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक देश दुनिया की खबरों और विश्लेषणों के लिए आप जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। अभी आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।